हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 6, 7 और 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक आसक्ति और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग श्री चरणों में कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारो बिम्बफलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदीसाङ्गपत्कमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय कर्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत स्मेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 6। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सोनिक मुनि जो कि समस्त ऋषियों में वयोवृद्ध हैं, वो सुत गोस्वामी से कह रहे हैं कि
कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त गुरु जांगलां उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये कथमालक्षिते पौरी संप्राप्त गुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये कथमालक्षितः पौरी संप्राप्तः गुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये कथमालक्षितः पौरै संप्राप्त गुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त गुरु जांगलान कथमालक्षितः पौरे संप्राप्त गुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये कथमालक्षितः पौरे संप्राप्तः गुरु जांगलान उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गज साहवये।
शब्दों का अर्थ कथमालक्षितः पौरे, कथम अर्थात कैसे, आलक्षित मान्य पौरे अर्थात नागरिकों द्वारा, संप्राप्त कुरु जंगलान संप्राप्त पहुंचे हुए कुरु जंगलान कुरु जंगल प्रदेश में, उन्मत्त पागल मूक गूंगा जड़वत मूड़ के समान विचरण घूमते हुए, गज साहवये अर्थात हस्तिनापुर में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद कुरु तथा जंगल प्रदेश में पागल गूंगे तथा मूड की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्रील सुखदेव हस्तिनापुर यानी अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ति ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर घूम रहे थे, अतएव उनके दिव्य पद को जान पाना नागरिकों के लिए कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु श्रवण के लिए जाएं। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को शांत नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तो लोग उन्हें पहचान गए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी नहीं दिखाई। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य पुरुष थे। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर एक और प्रश्न कर रहे हैं शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कि जब सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के घर से गए थे तो फिर वो जंगलों में कैसे रहते थे? उन्मत्त मूक जड़वत। उन्मत्त मतलब पागल, यानी कि किसी चीज का जिसको कोई होश ना है, ना अपने वस्त्रों का होश होता था, ना ही मतलब वेशभूषा का, और कोई भी अपने बारे में ये नहीं सोचते थे कि मेरे बारे में क्या, मतलब पागल की तरह व्यवहार करते थे। मूक, मूक माना गूंगा, जैसे हम कैसे बोलते हैं मूकं कुरु तु वाचालम्। मूकं कुरु तु वाचालम् यानी जब कृष्ण की कृपा होती है या जब गुरु महाराज की कृपा होती है तो एक गूंगा भी कविता बोल सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर मूक का मतलब होता है गूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी उन्मत्त यानी पागल, मूक अर्थात गूंगा, जड़वत, जड़वत मतलब जैसे बेजान होता है ना, उसको किसी कोई परवाह नहीं होती है किसी की, जड़वत मूड, मूड के समान विचरण कर रहे थे। अब क्योंकि वो अपने आप को अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करते थे, जंगलों में घूमते रहते थे और इस तरह से मतलब कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ। और है ना, इसे श्री प्रभुपाद ने बताया ना कि उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगिरी नहीं दिखाई। वास्तव में भक्तों, श्री प्रभुपाद ने एक अत्यंत ही सुंदर बात बताई है कि साधु को पहचानने के लिए उसका बाहरी पहनावा नहीं देखना चाहिए। अगर साधु के कभी दर्शन करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके विषय में उनसे श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। यदि आप साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर उनके दर्शन करने के कोई लाभ नहीं, क्योंकि देखकर क्या फायदा। अब उसने कोई है ना एडवांस ड्रेस पहना हुआ नहीं है जैसे आजकल चल रहा है, कोई है ना दिखने में उसका क्या, वो पार्लर से होकर आया है क्या, उसने फेस अपना ऐसा बनाया, उसने अच्छा हेयर स्टाइल बनाया, अच्छा डिजाइन बनाया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो साधु को या भक्त को देखकर आपका कभी लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके मुख से। इसलिए नहीं बोलते हैं भक्तों का संग करना चाहिए, देखना चाहिए वो कैसी ड्रेस पहनता है, वो कैसे लगता है, ऐसे नहीं, वो क्या विचार प्रदर्शित करता है, उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है भक्ति का, वो जब हम श्रवण करते हैं तो फिर हमारी हमारा जीवन पलट जाता है। तो यहाँ पर शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो जंगल में पागल होंगे, कथम लक्षित पावरे संप्राप्त कुरु जंगलान, कि नागरिक, पावरे का मतलब होता है नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, क्योंकि वो तो एकदम उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज साहवे का मतलब होता है हस्तिनापुर में, हस्तिना आदि को बोलते ना गज, क्योंकि श्री रूपा जी बोलते हैं एक राजा थे उनका नाम हस्ती था, तो उसमें इस हस्तिनापुर का निर्माण किया था, इसलिए उनका नाम हस्तिनापुर रखा गया। तो क्योंकि अपना पितृग्रह त्यागने के बाद, यानी कि अपना घर त्यागने के बाद, वो सुखदेव गोस्वामी पागल की भांति बस जंगलों में इधर उधर घूम रहे थे, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि उनको पहचाना कैसे लोगों ने कि ये कोई है ना इतने बड़े गोस्वामी हैं, या फिर इनसे कैसे है? उन्होंने ऐसा कैसे सहयोग हुआ, कथम वा लक्षिता पौरे, कि लोगों ने उसे पहचाना कैसे कि ये सुखदेव गोस्वामी है, क्योंकि उनका जो रहन सहन था उसके द्वारा तो उनके दिव्य पद को जान पाना नागरिक जितने भी थे नागरिकों के लिए कठिन था, तो फिर मुनि को कैसे उन्होंने पहचाना, कथम आलक्षित पावरे। परंतु श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे भले ही बाहर से जड़ गूंगे उन्मत्त पागल की तरह दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वो महान दिव्य पुरुष थे, और जब दिव्य पुरुष बात करता है तो पता चलता है कि उनके प्रवचन से, यानी जब उन्होंने प्रवचन किया श्रीमद् भागवतम का, जब बोलना शुरू किया तो उन्हें लोग पहचान गए। और ये फिलहाल तो इन्होंने क्या प्रश्न किया है कि क्योंकि उनका व्यवहार एकदम पागल की तरह गूंगे और जड़वत की तरह था, तो लोग उसे कैसे पहचाने, एक प्रश्न उन्होंने ये किया। और सातवें श्लोक में एक और प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं कथम वा पांडवीयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुते। कथम वा पांडवीयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवीयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। कथं वा पाण्डवीयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। शब्दों का अर्थ कथम वा पांडवस्य, कथम मतलब किस तरह, वा मतलब भी, पांडवीयस्य यानी पांडव के वंश परीक्षित राजर्षि मुनिना सह, राजर्षि अर्थात राजऋषि, मुनिना मुनि के सह साथ, संवाद समभूतात् संवाद संवाद या वार्ता, समभूता अर्थात हुआ, तात हे प्रिय, यत्र ऐशा यत्र जहां ऐशा इस तरह, सात्वती श्रुति, सात्वती अर्थात दिव्य, श्रुति अर्थात वेदों का सार। अनुवाद, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान व्यापार वेदों के इस महान दिव्य सार यानी भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है, यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्ति मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया, वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर एक और प्रश्न शून्य मुनि कह रहे हैं, वे कहते हैं कथम वा पांडवे यस्य, क्योंकि अब ये तो जंगलों में होते थे, सुखदेव गोस्वामी जंगलों में घूम रहे थे, किस तरह घूम रहे थे, पागल की तरह, और बिल्कुल मूक गूंगा होते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे और जड़वत रहते थे, तो कथम वा पांडवे यस्य, यानी पांडवे यस्य का मतलब जो परीक्षित महाराज, आप जो बता रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यह श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो परीक्षित महाराज जो कि राजर्षि थे, उनकी इस भेंट, इस मुनि के साथ किस तरह से भेंट हुई, और क्योंकि ये मुनि किसी साधारण व्यक्ति के साथ भी बात नहीं करते थे, तो एक राजा, अगर देखा जाए तो राजा क्या होता है, थोड़ा सा राजा लोग के साथ सन्यासी इतना ज्यादा बात बात नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ, संवाद समभूतात्त, हे प्रिय इस राजा परीक्षित की इस महामुनि के साथ भेंट कैसे हुई, और जिसके फलस्वरूप इतना सुंदर नाम दिया सात्वती श्रुति, सात्वती श्रुति यानी यह श्रीमद् भागवतम जो कि दिव्य महान दिव्य ग्रंथ है, उसका प्रवचन, मतलब ये श्रीमद् भागवतम जो समस्त श्रुतियों का सार है, उसका प्रवचन करना पड़ा उनको। ऐसा क्या हुआ था कि परीक्षित महाराज के सामने उनको यह श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रवचन संभव हुआ। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि प्राय लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये इतिहास है, काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें जो कहानियां हैं वो सब काल्पनिक है, अर्थात यह श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको कहा गया, शौनक मुनि क्या कहते हैं, सात्वती श्रुति की दिव्य श्रुति है, ये दिव्य वेद है, वेदों का सार है, यदि ऐसा न होता तो अभी कौन कौन रहे हैं, शौनक मुनि जो कि 88,000 ऋषियों के प्रधान है, 88,000 ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, जिसका सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ज्ञान है और सबसे ज्यादा वयोवृद्ध है, वो बोल रहे, और बोल किन को रहे हैं, सूत गोस्वामी को, ऐसे सूत गोस्वामी जो जिनको कृपा प्राप्त हुई है बलराम जी की, सुखदेव मुनि से सुनकर आए हैं, वेद व्यास जी के पास जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान, और समस्त ऋषियों के पास जितना ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान उमेल के रख दिया सूत गोस्वामी के अंदर, जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी, सॉरी, ऐसे सूत गोस्वामी और शौनक मुनि जिस ग्रंथ के विषय में चर्चा कर रहे हैं वो कोई साधारण ग्रंथ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं शौनक मुनि सूत गोस्वामी को कि ये जो दिव्य साहित्य जो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को दिया वो तो सात्वती श्रुति है, दिव्य ग्रंथ है, तो एक राजा को यह दिव्य ग्रंथ देना क्यों पड़ा, मतलब क्यों ऐसा क्या हुआ था कि उनको यह भागवतम उन्होंने सुनाया, और उन दोनों की आपस में भेंट कैसे हुई। और एक अत्यंत ही सुंदर दूसरा प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो कहते हैं शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षति महाभागस् तीति कुर्वंस्तराशनम्। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षति महाभागस् तीति कुर्वंस्तराशनम्। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षति महाभागस् तीति कुर्वंस्तदाश्रमम्। सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षति महाभागस् तीति कुर्वंस्तदाश्रमम्। शब्दों का अर्थ सगोदोहन मात्रम ही, मतलब वह कौन जिसकी बात हो रही है, सुखदेव गोस्वामी जो है वो क्या करते हैं, गोदोहन मात्रम, गो यानी गौ, दोहन मतलब जितनी देर में गौ को दोहा जाता है, मात्रम उतने ही समय, यानी केवल गाय दोहते समय तक ही, निश्चय ही गृहेशु ग्रह में, घर में, गृह मेदी नाम गृहस्थियों की, अवेक्षते अर्थात प्रतीक्षा करते हैं, महाभागस्थ, महाभागव का मतलब होता है परम भाग्यशाली, तीर्थी, तीर्थ कुरुवन करते हुए, तत् आश्रमम उस घर को, अनुवाद वे अच्छा सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दोही जा सकती है, वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या बताई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, यानी जितने समय में गाय दोह दी जाती है उससे ज्यादा नहीं रुकते थे और भाग्यशाली ग्रस्त से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं, जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें उनके कार्यों से यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदर्शन करने के अतिरिक्त गृहस्थियों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह गृहस्थ के सांसारिक संपन्नता से अनुरक्त होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम बन जाए। सन्यासी के लिए ऐसा करना, सन्यासी के लिए ऐसा करना गरलपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है, क्योंकि शौनक मुनि सुखदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं तो उनकी एक और विशेषता बता रहे हैं। वे कह रहे हैं सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम, सगोदोहन यानी कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, किसी के घर पे भी नहीं जाते थे, वो सन्यासी थे और अगर किसी से भिक्षा लेने जाते थे तो भी उनका प्रयोजन क्या होता था, जहाँ से वो भिक्षा लेने जाते थे वो बहुत ही भाग्यशाली घर होता था और वहां पर भी सिर्फ उतनी देर रुकते थे जितनी देर में गो दोहन हो जाए, यानी वो जब गौ को दोहते ना तो फ्रेश दूध निकलता है, उस दूध को यानी कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि बस वो चाहते थे कि बस अभी दूध दो ले तो वो मैं पीऊं, मुझे दूध लेना भिक्षा में दे और पीऊं। इतनी देर तक वो किसी गृहस्थ के घर पे रुकते थे, यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस उससे ज्यादा नहीं, किसी के घर पे उससे ज्यादा कभी रुकते नहीं थे, किसी से ज्यादा देर तक बात नहीं करते थे। तो शीला प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें तात्पर्य में समझाते कि जो सन्यासी होते हैं उन्हें ग्रस्तों से, जो ग्रस्त होते हैं उनके ना सांसारिक संपन्नता से अनुरक्त होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। यानी कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, सन्यासी भी होते हैं, वो जो गृहस्थी होते हैं अगर ज्यादा धन दौलत वाले होते हैं तो उनसे ज्यादा बहुत अनुरक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और सोचते हैं हमें और भी उनसे ज्यादा धन प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। सन्यासी अगर गृहस्थ से भिक्षा मांग रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ, क्यों, ताकि उन गृहस्थियों के मन को पवित्र कर सकूं, उनको पवित्र, उनको आशीर्वाद देने के लिए। किसी गृहस्थ के घर पे अगर कोई सन्यासी या भक्त जाता है तो मुझे इतना इतना प्राप्त होगा ये सोच कर नहीं, बल्कि किसलिए कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि क्योंकि वो गृहस्थ है। अब यहाँ गृह मेहदी का क्या मतलब होता है कि वो सदैव केवल उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, आहार निद्रा वही मैथुन, बच्चे पैदा करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जाते हैं, बस। तो अगर कोई भक्त आ जाएगा, कोई सन्यासी आ जाएगा, तो उसका आशीर्वाद मिलेगा, फिर क्या होगा, उनके जीवन परिवर्तन हो जाएंगे। तो वास्तव में भक्त का क्या मतलब होता है, वैष्णव जन तो होता है कहिए जो पीर पढ़ाई जाने। तो वो देख रहा है कि क्योंकि ये बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं, इनको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, तो किसी तरह से मैं उनके घर जाऊं, उनको आशीर्वाद दूं, भगवान का नाम सुनेंगे, मेरा दर्शन, शुद्ध भक्त का दर्शन करेंगे, तो क्या होगा कि उनके हृदय में भी ऐसा होगा कि हमें अब भगवान की भक्ति के विषय में सोचेंगे। तो केवल उनके हृदय पवित्र करने के लिए यहाँ पर लिखा तीर्थी कुर्वस सदाश्रमम, कि वो उनके घर को पवित्र करने के लिए ही जाते। तो यहाँ पर पूछ रहे शोने मुनि कि क्योंकि शुकदेव गोस्वामी किसी के घर पर आधे घंटे से ज्यादा रुकते नहीं थे, वो सिर्फ गोदोहन मात्रम के समय किसी के घर, कोई गृहस्थ के घर पे भी इतनी देर रुकते थे, किसी से ज्यादा बात बात तो करते नहीं थे। तो फिर ये महाराज परीक्षित के साथ इतनी देर, एक घंटा, दो घंटा, दस घंटा, बीस घंटा नहीं, एक दिन, चार दिन, छह दिन नहीं, सात दिन, पूरी सात दिन तक, सात दिन सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस कैसे उनके साथ रहे, क्या हुआ था कि पूरी सात दिन तक उन्होंने उस राजा के साथ बैठकर उनको यह दिव्य ग्रंथ सुनाने का, ये दिव्य जो साहित्य है, ये श्रीमद् भागवतम सुनाने का निश्चय किया। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के साथ सात दिन तक रहे और उन्होंने यह पवित्र ग्रंथ उनको सुना है, क्योंकि वो तो किसी से बात बात नहीं करते थे, जंगलों में रहते थे, तो फिर ना राजा, वो किसी गृहस्थ के पास भी नहीं रहते, तो राजा के साथ इतना समय उन्होंने बिताया, ऐसा क्या हुआ था कि, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे जितने भी ऋषि हैं उन्होंने अपना प्रधान बनाया था शौनक मुनि को, और शौनक मुनि क्योंकि सारे ऋषि जो है उनके अंदर इतनी लालसा है भागवतम महापुराण के विषय में श्रवण करने की, तो वो उनकी लालसा को देखकर एक एक चीज पूछना चाहते कि कहीं कुछ रह न जाए, हर चीज हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण के विषय में, हर बात उनके वक्ता के विषय में, और हर चीज हमें पता हो, क्योंकि फिर आगे पता क्या बोलेंगे, ये तो मैंने जो पूछे हैं वो भी मुझे बताइए, और जो मुझे नहीं पता था, पूछने नहीं आए, वो भी बता दीजिए, हमें सब कुछ बताइए। हम लालसा है, हमारे हृदय के अंदर इतनी तीव्र उत्कंठा है इस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए, बस आप हमें सुनाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन जो है, मनुष्य का जीवन, उसका एक ही लक्ष्य है क्या, भगवान के विषय में श्रवण करना। तो ये भगवान के विषय में यदि हम श्रवण करेंगे, उसी से हमारे हृदय को पवित्रता प्राप्त होगी, उसी से हमारा जीवन जो है सफल होगा। तो समस्त ऋषि जो कि बुद्धिमान थे, उन्होंने यह फैसला किया कि अब सूत गोस्वामी से वह सब कुछ सुनेंगे, वो समस्त इतनी देर ये कथा को सुनेंगे और उसका सब कुछ हमें उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं और भी प्रश्न पूछेंगे। कृपया आप सब साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।